بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ نساء کی 58ویں اور 59ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری شہات محمد انور نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، نسندیہ ایشور تمہیں آدیش دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا دو، اور جب کبھی لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو نیائے سے فیصلہ کرو۔ نسندیہ ایشور تمہیں اچھے اپدیش دیتا ہے، نشچت روپ سے وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور کا آگیا پالن کرو، تتھا پیغمبر اور سوئم تم میں سے ایشور دوارا نردھارت لوگوں کا آگیا پالن کرو۔ یدی کسی بات میں تم میں وواد ہو جائے تو اسے ایشور کی کتاب اور پیغمبر کی اور پلٹاؤ، یدی تم ایشور اور پلے پر ایمان رکھتے ہو۔ نسندیہ ووادوں کو سماپت کرنے کے لیے یہ پدھتی بہتر ہے اور اس کا انت ادھک بھلا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج رویوار ہے، آذر کی 7، ربیع الثانی کی 22 اور نومبر کی 28 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد آپ سنیں گے راجنیتک چرچا، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے قرآن ایشور چمتکار، اور انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تازہ اور وسط خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے parstoday.com/hi۔ اب آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے راشٹرپتی نے ازبکستان کے راشٹرپتی سے ملاقات کی ہے۔ پرمانو ویگیانکوں کی ہتیا کے معاملوں میں ایران جلد فیصلہ سنانے والا ہے۔ نئی دلی کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے رکاوٹ کھڑی نہیں کی تو افغانستان کو 50,000 ٹن گیہوں دان کیا جائے گا۔ ابراہیمی مسجد پر اسرائیلیوں نے دھاوا بول دیا ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی نے ازبکستان کے راشٹرپتی سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے سنواداتا کی رپورٹ کے مطابق رویوار کو ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے ای سی او کے 15ویں شکھر سمیلن کے اتر ازبکستان کے راشٹرپتی شوکت مرزایوف سے ملاقات کی۔ ایران کے راشٹرپتی ایک شش منڈل کے ساتھ آرتھک سہیوگ سنگٹھن ای سی او کے 15ویں شکھر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے ترکمینستان کی راجدھانی عشق آباد پہنچے ہیں۔ راشٹرپتی رئیسی نے اپنی اس یاترا کے دوران ای سی او کے سدسیہ دیشوں کے راشٹرادھیکشوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔
راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے گت راتری ترکمانستان کی راجدھانی عشق آباد میں بل دے کر کہا کہ ایران سمست وشیش کر پڑوسی و شتریہ دیشوں کے ساتھ سمبندوں میں وستار کا اچھک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیتری اور پڑوسی دیش ایرانی اتپادوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس چیز کا صحیح سے لابھ اٹھایا جانا چاہیے۔ راشٹرپتی نے اسی پرکار ایران اور ترکمانستان کے لوگوں کے مدھیے سانسکرتک، ایتہاسک اور دھارمک سمانتاؤں کی اور سنکیت کیا، اور کہا کہ ایران اور ترکمانستان دوستی کے سمبندوں سے بڑھ کر ایک دوسرے سے پاریوارک، ہاردک، سانسکرتک اور آستھا سمبند رکھتے ہیں۔ رئیسی نے عشق آباد ہوائی اڈے پر کہا کہ دونوں پکشوں کے مدھیے ہونے والی وارتاؤں میں سمبندوں میں ادھک سے ادھک وستار پر بل دیا گیا، اور ہم اس بات کا پکا ارادہ رکھتے ہیں کہ رکاوٹوں کو دور کر کے دونوں دیشوں کے مدھیے سہیوگ کی سطح کو سویکار سیما تک پہنچا دے۔ ترکمانستان میں رہنے والے ایرانی ویاپاریوں سے ملاقات بھی راشٹرپتی کے آج کے کاریکرم میں شامل ہے۔ राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी अपने तुर्कमन समकक्ष के आधिकारिक निमंत्रण पर आर्थिक सहयोग संगठन एको के 15वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुर्कमेनिस्तान गए हैं। ये सम्मेलन आज तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद में हो रहा है। एको क्षेत्रीय देशों का एक संगठन है और वर्ष 1985 में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की प्रगति के लिए उसकी बुनियाद रखी थी।
मानवाधिकार मामलों के ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान जल्द ही कई वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के मामले में अंतिम फैसले की घोषणा करेगा। ऐसा माना जाता है कि इन हत्याओं के पीछे इसराइल है। ईरान के मानवाधिकार कार्यालय के महासचिव काजिम गरीबाबादी ने रविवार को कहा, तेहरान अभियोजक के कार्यालय के एजेंडे में परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं की आपराधिक जांच का मुद्दा सबसे ऊपर है। एक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और दूसरे मामलों में कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 27 नवंबर 2021 को ईरान अपने सबसे वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की शहादत की पहली बरसी मना रहा है, जिनकी इसराइल ने हत्या कर दी थी। गरीब आबादी ने फखरीजादे की हत्या की निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और आतंकवाद से लड़ने का दावा करने वाले देशों की ईरानी वैज्ञानिक की हत्या पर चुप्पी की भी निंदा की।
परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने बल देकर कहा है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की धमकी देने से पहले इसराइल को खुद को पहचानना चाहिए। मोहम्मद इस्लामी ने यमन के अलमसीरा टीवी से बात करते हुए कहा कि ईरान ने अपनी राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी के अंतर्गत न तो परमाणु हथियारों के लिए प्रयास किया है और न करेगा, और देश परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के कानूनों के परिप्रेक्ष्य में कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने बल देकर कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों का जो भी निरीक्षण किया गया है वो इस बात का सूचक है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई दिशा भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व साम्राज्य ये समझ रहा है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करके वो इस्लामिक क्रांति को आघात पहुँचा सकता है, किंतु स्थिति बिल्कुल उल्टी है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने कहा कि ये कार्य न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की कमजोरी का कारण नहीं बना है, बल्कि ईरान के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों की मजबूती और उनमें विस्तार का कारण बना है। उन्होंने परमाणु समझौते के पक्षों की आलोचना करते हुए कहा कि परमाणु समझौते के पक्षों ने अपने वचनों पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वियना में जो परमाणु वार्ता होने वाली है वो परमाणु समझौते के पक्षों की ओर से अपने वचनों के पालन के संबंध में है, न कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बारे में। ज्ञात रहे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इस बात की पुष्टि परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA अपनी कई बार की रिपोर्टों में कर चुकी है।
ईरान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि देश की कुल आबादी में से 85% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री बहराम एनुल्लाही का कहना है कि देश के कुछ प्रांतों में 92% लोग कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जबकि देश की कुल आबादी में से 70% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 80 मरीजों की जान जा चुकी है। रविवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 80 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा करीब 1,29,000 से ज्यादा हो गया है।
रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सैनिक कार्रवाई ने अफगानिस्तान को मानव त्रासदी के मुहाने पर पहुंचा दिया है। समाचार एजेंसी इसना की रिपोर्ट के अनुसार मारिया जखारोवा ने टेलीग्राम पर लिखा है कि अमेरिका अब भी अफगानिस्तान में उत्पन्न संकट को हवा दे रहा है। उन्होंने लिखा कि ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि अमरीकी एक ओर अफगानियों से मानवता प्रेमी सहायता का वादा करते हैं और दूसरी ओर उन्हीं की ही संपत्ति को अपने बैंकों में सील कर देते हैं, और ये स्पष्ट नहीं है कि ये पूंजी कब उनके स्वामियों को वापस की जाएगी। कहा जा रहा है कि जारी वर्ष के अगस्त महीने के मध्य से जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता का बागडोर संभाला है तब से इस देश को दिया जाने वाला विदेशी समर्थन न केवल रुक गया है बल्कि अमेरिका ने भी अफगानिस्तान की $10 अरब की संपत्ति रोक ली है।
بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ افغانستان کو گیہوں دان کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ بنا کسی شرط کے اس کے ساتھ سہیوگ کرے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق رویوار کو بھارتیہ ودیش منترالے نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہم افغان جنتا کے لیے 50,000 ٹن گیہوں بھیجنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں پاکستان سے آشا ہے کہ وہ اس کام میں سہیوگ کرے گا۔ بھارتیہ ودیش منترالے کے اس بیان میں ان شرطوں کا کوئی الیکھ نہیں کیا گیا ہے جو پاکستان نے افغانستان کے لیے گیہوں بھیجنے کو لے کر لگائی ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ان کی سرکار افغانستان کو دان کیے جانے والے گیہوں کے استھانانترن میں سہیوگ کرے گی۔
دکشن افریقہ میں ملے ایک کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون نے بھارت میں دستک دے دی ہے اور دکشن افریقہ سے بھارت لوٹے 2 لوگوں کو کورونا پازیٹیو پایا گیا ہے۔ دکشن افریقہ سے بنگلور لوٹنے والے 2 ویکتیوں کو کورونا پازیٹیو پایا گیا ہے، پرنتو ابھی تک یہ سپشٹ نہیں ہے کہ یہ لوگ کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے سنکرمت ہیں یا نہیں، اور دونوں ویکتیوں کے سیمپل جینوم سیکوینسنگ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔
فلسطینی سوتروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں نے الخلیل شہر میں استھت ابراہیمی مسجد پر دھاوا بول دیا ہے۔ فلسطین سوچنا کیندر کی رپورٹ کے مطابق زائونی شاسن کے راشٹرپتی اسحاق ہرزوگ کے نیتز میں زائونیوں کے ایک سموہ نے رویوار کو یہودیوں کے تیوہار ہنوکا کے افسر پر الخلیل شہر میں استھت ابراہیمی مسجد پر دھاوا بول دیا۔ غورطلب ہے کہ زائونی سینکوں نے ایک ہفتے کے لیے اس مسجد میں فلسطینیوں کے پرویش پر پرتیبند لگا دیا ہے، دوسری اور زائونیوں کے لیے اس مسجد کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ وہ ہنوکا کے افسر پر زبردستی اپنے دھارمک سنسکاروں کو انجام دے سکیں۔
لبنان کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حزب اللہ کے مہا سچیو کے سہائک نے کہا کہ فلسطین کی آزادی میں کیول سمے کی بات ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ فلسطین کی آزادی میں کیول سمے کی بات ہے کہ وہ کب آزاد ہوگا، وہ کیندر ہے، اور اگر وہ شانت ہو گئی اور فلسطین آزاد ہو گیا تو پورا کھیتر آزاد ہو جائے گا۔ حزب اللہ کے مہا سچیو کے سہائک نے کہا ہے کہ یہ آندولن ہتھیاروں سے لیس ہوتا رہے گا، سینیہ پرشکشن جاری رکھے گا تاکہ زائنی شاسن کی اور سے تھوپے جانے ہر سمبھوت یدھ سے مقابلے کرنے کے لیے تیار رہے اور وہ دشمن کو نروتر نہیں چھوڑے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ انمول باتیں دوستوں، کارکرم انمول باتیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ آج ہم ورشٹھ نیتا کی نظر میں پرائشچت یا استغفار کے ارتھ کے بارے میں چرچا کریں گے۔ اختر رضوی کا سلام سویکار کریں۔ دوستوں، اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اپنے سمبودھن میں پرائشچت اور استغفار کے ارتھ کا الیکھ کرتے ہیں اور پاپوں کی شمع کے ارتھ تتھا منش کی آتما کی بلندی میں اس کے مہتو کو بیان کرتے ہیں۔
کہ یکی از ارکان توبه استغفار است، یعنی از خدای متعال طلب آمرزش کردن، این یکی از نعمتهای بزرگ الهی است۔
توبہ کے استمبھوں میں سے ایک استغفار یا پاپوں سے شمع یاچنا ہے، ارتھات ایشور سے اپنے پاپوں کی شمع مانگنا۔ یہ اللہ کی مہا انوکمپاؤں اور وبھوتیوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہان ایشور نے اپنے بندوں کے لیے پرائشچت کا دروازہ کھول دیا ہے۔
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों पर प्रायश्चित के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि वो परिपूर्णता के मार्ग पर आगे बढ़ें और पाप उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर न करे
و گناه اونها را زمینگیر نکنه، چون گناه انسان را از اوج اطلاع انسانی ساقط میکند.
سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ چونکہ گناہ انسان کو مانویہ پریپورنتا تک پہنچنے نہیں دیتا، گناہوں میں سے ہر گناہ انسان کی آتما کو نقصان پہنچاتا ہے اور مانویہ پوترتا، अध्यात्म और मानवीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाते हैं और मनुष्य की आत्मा की पारदर्शिता को खत्म कर देता है और उसको प्रदूषित कर देता है।
उन जंबे मानवियती के दर इंसान हस्त के मौये तमायुज इंसान बा बगिये मौजूदात इन आलम मादस्त उरा अस शफाफियत मी अंदाजंद।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पाप इंसान में पाए जाने वाले अध्यात्म के आयाम को और इस भौतिक संसार में पाए जाने वाली दूसरी प्रजातियों से इंसान को अलग रखने वाली चीज को पारदर्शी बनाती है, उसे जानवरों और पत्थरों से नजदीक करते हैं। इसी का नाम गुनाह है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित है, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के विरोध में ईरान का बयान और भारत नियंत्रित कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए दबाव।
आप आर्टिकल 370 को भूल जाइए।
तो सबसे पहले राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का तुर्कमेनिस्तान दौरा। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी शनिवार की शाम तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर इश्काबाद पहुंचे, जहां पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी आर्थिक सहयोग संगठन ECO की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर हैं। उन्होंने इस शिखर बैठक को संबोधित करते हुए ईरान का पक्ष रखा। इश्काबाद से IRIB के लिए हुस्निये सादाते शुबैरी की रिपोर्ट, साथी अहमद अब्बास की जबानी।
ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी आर्थिक सहयोग संगठन ECO की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी इश्काबाद में हैं। शिखर बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रईसी ने ECO के सहयोग के क्षेत्रों को चिन्हित किया और क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि ईरान ये मानता है कि क्षेत्र के मुद्दों का संचालन क्षेत्रीय देशों के हाथों होना चाहिए। रईसी ने कहा कि कॉकेशिया के इलाके में टकराव और तनाव का खात्मा क्षेत्रीय सहयोग के नए दौर और दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति रईसी ने अफगानिस्तान के विषय में बात करते हुए कहा कि ईसीओ का संदेश ये होना चाहिए कि ये संगठन अफगानिस्तान के हालात को बेहतर बनाने और वहां के पुनर्निर्माण के समर्थन के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति रईसी ने परमाणु समझौते से अमरीका के बाहर निकल जाने और पाबंदियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अमरीका की जालिमाना पाबंदियों से हमारा ये इरादा कमजोर नहीं होगा कि क्षेत्र के देशों के साथ हम अधिकतम स्तर पर सहयोग करेंगे। राष्ट्रपति रईसी ने ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों से इश्काबाद में अलग अलग मुलाकातें भी की। आज सुबह तड़के राष्ट्रपति रईसी की मुलाकात इश्काबाद में मौजूद इस्लामी गणतंत्र ईरान के उद्यमियों और व्यापारियों से हुई, जिनमें व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखीं। राष्ट्रपति रईसी ने बहुत संयम के साथ उद्यमियों और व्यापारियों की बातों और समस्याओं को सुना। राष्ट्रपति रईसी ने इश्काबाद में ईरान के कल्चरल हाउस का भी दौरा किया और वहां चल रही फारसी जबान के क्लासों को करीब से देखा। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसके अलावा भी कई देशों के नेताओं से इश्काबाद में मुलाकातें की हैं जो ईसीओ की बैठक में भाग लेने के लिए इस शहर में मौजूद हैं। इश्काबाद से IRIB के लिए हुसनीये सादाते शुबैरी की रिपोर्ट।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की शहादत की वर्षगांठ पर कहा कि परमाणु वैज्ञानिकों को शहीद करना मानवता के खिलाफ अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं साथी मोहम्मद मेहदी।
ईरान में मानवाधिकार आयोग के उप सचिव काजिम गरीबाबादी ने परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादे की शहादत के वर्षगांठ पर कहा, परमाणु वैज्ञानिकों को शहीद करना मानवता के खिलाफ अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने आतंकवाद से मुकाबले का दावा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं की चुप्पी की आलोचना की। पिछले वर्ष 27 नवम्बर 2020 को तेहरान प्रांत के दमावंद क्षेत्र के आब सर्द शहर में परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को शहीद कर दिया गया था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवान सेवाएं पेश की हैं। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान को विभिन्न व विस्तृत पैमाने पर आतंकवादी हमलों का सामना रहा है। आतंकवादी गुट अब तक 17,000 से अधिक ईरानी राजनेताओं, अधिकारियों, धर्मगुरुओं, महान हस्तियों और परमाणु वैज्ञानिकों को भी शहीद कर चुके हैं और जिन आतंकवादी गुटों ने ये अपराध अंजाम दिए हैं उन्हें आतंकवाद से मुकाबला करने वाले देश अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2010, 11 और 12 में ईरान के कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को शहीद करने का क्रम भी आरंभ हो गया और पिछले वर्ष डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे को शहीद कर दिया गया। आतंकवाद से मुकाबले के संबंध में पश्चिम का जो दोहरा मापदंड है वो न केवल आतंकवाद से मुकाबले में प्रभावी नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से मुकाबले के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी विफलता और आतंकवाद के फलने फूलने का कारण बना है। प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक नोआम चॉम्स्की कहते हैं कि अमेरिका आतंकवाद का सरगना व अगुआ है। इस बारे में वो कहते हैं कि जब तक ईरान स्वाधीन व स्वतंत्र रहेगा और अमेरिका के सामने घुटने नहीं टिकेगा तब तक उससे अमेरिका की शत्रुता व दुश्मनी जारी रहेगी। जानकार हलकों का मानना है कि ईरान के खिलाफ जो आतंकवादी हमले किए जाते हैं और उसके विकास के रास्ते में जो विघ्न उत्पन्न किए जाते हैं उन सब का मूल लक्ष्य ईरान को विकास करने से रोकना है। पर ईरान के दुश्मनों को ये बात जान लेनी चाहिए कि इस प्रकार के कार्यों से वे न तो ईरान की प्रगति को रोक सकते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों व राष्ट्रों के लिए ईरान को आदर्श में परिवर्तित होने से रोक सकते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में ईरान की ध्यान योग्य प्रगति को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
और अब रुख करते हैं भारत का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में एक बार फिर कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांगें तेज हो गई हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद कश्मीरी नेताओं और जनता ने केंद्र सरकार पर कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए दबाव तेज कर दिया है। और भी अन्य विषयों के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार वापस नहीं मिलते हैं तब तक वो अपना अभियान जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक इस अभियान से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। जम्मू के रामबन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने कश्मीर के हवाले से जो नीति अपनाई है वो असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि दो तरह के कानून हैं, लद्दाख के लिए 35 और 370 बराबर है, परंतु कश्मीर और जम्मू प्रांत के वासियों के लिए ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की नीतियां उनकी समझ से बाहलातर है क्योंकि कश्मीर में विकास के नाम पर इन धाराओं को हटाने का काम किया गया था, परंतु जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ वक्तव्य जारी किए जाते हैं और नई दिल्ली से मंत्रियों को बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार लाना है और यहाँ शांति स्थापित करने हैं तो नई दिल्ली को चाहिए कि वो फौरी तौर पर हमारे छीने हुए अधिकार हमें वापस करें। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि बताया जाता है कि अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम जितने भी बार समर्थक दल हैं वो सक्रिय हो गए हैं। पीडीपी भी जनसभाओं का आयोजन कर रही है जबकि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अपने जनसभाओं की एक सूचना जनता तक पहुंचाई है। इस हवाले से उन्होंने भी दक्षिणी कश्मीर में कई जनसभाओं को संबोधित किया। गुलाम नबी आजाद ने भी लोगों पर बल दिया कि वो एकजुट रहे। उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली को ये चाहिए कि कश्मीरी लोगों का विश्वास जीतना है तो नई दिल्ली को कश्मीरियों का विश्वास जीतने के लिए वो प्रावधान वापस करने होंगे जो उनसे छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता शाजिया बशीर ने कहा,
आप आर्टिकल 370 को भूल जाइए, आप आर्टिकल 370 के खाब देखना छोड़ दीजिए। ये चीज जो है ये बहुत सारे लोग हम लोगों से कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहते हैं, और मेरा जवाब उन सभी लोगों को, स्पेशली बीजेपी को, यही होगा, नहीं भूलेंगे। करिए क्या करना है आपको। हम आर्टिकल 370 की जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही है, जो मीडिया पे चल रही है, जो पब्लिक डिस्कोर्स में हो रही है, उस लड़ाई से हम पीसफुली और डेमोक्रेटिकली पीछे नहीं हटेंगे।
इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने कहा है कि कश्मीर में जो घटनाएं घटी हैं उस हवाले से पुलिस ट्रांसपेरेंट है और किसी भी घटना के जांच में वो भरपूर सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि हैदरपोरा इंसिडेंट के हवाले से जो जांच के आदेश दिए हैं उसमें पुलिस और सुरक्षा बल भरपूर सहयोग कर रहे हैं, परंतु उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि उनके पास बहुत सारे सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं जिनसे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जो इनकाउंटर हुआ उसमें जो लोग हताहत हुए वो अलगाववाद से वाबस्ता थे। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज कल, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है आत्मा को शांति प्रदान करने वाला कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
Oh! कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। पिछले कार्यक्रम में सूरह कहफ की व्याख्या समाप्त हुई और इस कार्यक्रम से हम कुरान मजीद के 19वें सूरह अर्थात सूरह मरियम की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। ये सूरह मक्का नगर में ईश्वर की ओर से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया।
इस सूरह में हजरत जकरिया, हजरत मरियम, हजरत ईसा और इसी प्रकार हजरत यहिया, इब्राहिम, इस्माइल और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों के जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। रोचक बात यह है कि हजरत मरियम के अतिरिक्त किसी अन्य महिला के नाम पर पूरे कुरान मजीद में कोई अन्य सूरह नहीं है।
तो आइए पहले सूरह मरियम की पहली, दूसरी और तीसरी आयतों की तिलावत सुने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا।
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। काफ हा या ऐन साद, ये अपने बंदे जकरिया पर आपके पालनहार की कृपा का वर्णन है जब उन्होंने अपने पालनहार को धीमी आवाज में पुकारा।
सूरह मरियम भी कुरान मजीद के अन 28 सूरों की भांति हुरूफ मुकत्ता या विच्छेदित अक्षरों से आरंभ हुआ है। हम इस कार्यक्रम में अनेक बार बता चुके हैं कि कुरान मजीद के लगभग 1/4 सूरों के आरंभ में आने वाले इन अक्षरों का अर्थ उन रहस्यों में से है जिसका ज्ञान अब तक मनुष्य के पास नहीं है और आशा की जाती है कि पैगंबर इस्लाम के अंतिम उत्तराधिकारी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के प्रकट होने के बाद इन अक्षरों का रहस्य खुल जाएगा।
हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के भाई हजरत हारून की संतानों में से एक हैं। वे बनी इसराइल की ओर भेजे गए पैगंबरों में से एक हैं और कुरान मजीद में उनके नाम का 7 बार उल्लेख हुआ है।
ईश्वर कुरान मजीद में कुछ पैगंबरों और कुछ जातियों के वृत्तांत का वर्णन करता है ताकि अच्छे व बुरे लोगों के प्रति अपने प्रेम व कोप को दर्शाए और ये बात हमारे और आगामी पीढ़ियों के लिए पाठ रहे। ये आयतें हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम पर ईश्वर की दया व कृपा की ओर संकेत करती हैं जिन्होंने लोगों से दूर रहकर एकांत में ईश्वर से प्रार्थना की कि वो उन्हें संतान प्रदान करे।
शायद उन्होंने ये प्रार्थना एकांत में इसलिए की कि लोग उनका परिहास न करें और ये न कहें कि ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी आयु के अंतिम दिनों में अपने सफेद बालों के साथ ईश्वर से संतान की प्रार्थना कर रहा है। अलबत्ता पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिजनों के कथनों के अनुसार उत्तम प्रार्थना वही है जो एकांत में और धीमी आवाज में की जाए।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर के प्रिय बंदों के नामों का उल्लेख और उनका स्मरण एक मान्यता है जिसकी सीख ईश्वर ने हमें कुरान मजीद में दी है।
जीवन में प्रार्थना की भूमिका की ओर से निश्चेत नहीं रहना चाहिए क्योंकि प्रार्थना ईश्वर की दया व कृपा को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है।
आइए अब सूरह मरियम की आयत नंबर 4 और 5 की तिलावत सुने।
قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وكانت امرأتي عاقرا فهل لي من لدنك وليا।
जकरिया ने कहा, प्रभुवर निश्चित रूप से मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरे सिर के बाल बुढ़ापे से सफेद हो गए हैं और मैं कभी भी तेरी ओर से प्रार्थना की स्वीकृति से वंचित नहीं रहा हूँ। हे मेरे पालनहार, मुझे अपने बाद अपने परिजनों के बारे में भय है और मेरी पत्नी बांझ है, तो तू अपनी ओर से मुझे एक उत्तराधिकारी प्रदान कर।
اسلامی اتہاس میں ورنت ہے کہ حضرت زکریہ ورد ہو چکے تھے کنتو ان کی کوئی سنتان نہیں تھی. انہیں چنتا تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پشچات ان کی جاتی کے کچھ لوگ جن میں ان کا اتراادھیکاری بننے کی یوگتا و کشمتا نہیں تھی سوئم کو ان کے اتراادھیکاری کے روپ میں پرستت کر دیں. اسی کارن انہوں نے ایشور سے پرارتھنا کی کہ وہ انہیں ایک یوگیہ پتر پردان کرے جو ان کا اتراادھیکاری بنے اور ان کے بعد ان کے مارگ کو جاری رکھے. کنتو ودت روپ سے یہ پرارتھنا سویکار ہونے یوگیہ نہیں تھی کیونکہ حضرت زکریہ اور ان کی پتنی دونوں ہی بہت ادھک ورد ہو چکے تھے اور سوبھاوک روپ سے ان کے ماتا پتا بننے کی سمبھاونا نہیں تھی.
کنتو ایشور کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. جس نے اس سرشٹی کی رچنا کی ہے اور اس کے لیے قانون نردھارت کیے ہیں وہ جب چاہے اور جہاں آوشک ہو ان قانونوں کو سماپت کر سکتا ہے. جس پرکار سے کہ ایشور کی اچھا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کی جلانے کی وشیشتا سماپت ہو گئی.
سیدھانتک روپ سے ایمان والا ویکتی بھوتک و رسائنک شاستر کے سدھانتوں کو سویکار کرتا ہے اور انہیں سمجھنے و پریوگ کرنے کا پریاس کرتا ہے, کنتو وہ ایشور کی شکتی کو پرکرتی سے اتر سمجھتا ہے. وہ سویم کو اور اپنی اچھاؤں کو بھوتک قانونوں کے پریپریکش میں سیمت نہیں سمجھتا.
سپشٹ ہے کہ ان اچھاؤں کی پراپتی کا سب سے اتم مارگ جنہیں سوابھاوک ایوم پراکرتک ڈھنگ سے پراپت کرنا سمبھو نہیں ہے ایشور سے پرارتھنا کرنا ہے. البتہ وہ پرارتھنا جو ویکتی ایوم سماج کے وکاس کا کارن ہو, نہ کہ آنترک اچھاؤں کے چلتے انوچت پرارتھنا. مہتوپورن بات یہ ہے کہ ویکتی کو اپنا ہر سمبھو پریاس و پریتن کرنا چاہیے, یہ سوچ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ پرارتھنا کاریہ و پریاس کا استھان لے سکتی ہے.
یہاں اس بات پر دھیان رہنا چاہیے کہ پرارتھنا کا سویکار ہونا ایشور کی تتو درشتا پر نربھر ہے اور سمبھو ہے کہ ہمارے بھرپور پریاس اور پرارتھنا کے باوجود ہماری اچھائیں پوری نہ ہوں. اتہ ہمیں نراش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بات پر وشواس رکھنا چاہیے کہ ایشور ان باتوں کو جانتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے, اور سمبھو ہے کہ پرارتھنا کا سویکار ہونا ہمارے ہت میں نہ ہوتا.
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ایشور پر ایمان رکھنے والے لوگ سدیو اس کی دیا کی اور سے آشاوان رہتے ہیں, کیونکہ ایشور کی دیا کی اور سے نراشا منوش کی تباہی کا کارن بنتی ہے.
ایشور منوش کی اچھاؤں سے اوگت ہے, کنتو پرارتھنا کرنا منوش کے بھیتر وکاس بندگی کی بھاونا اور نشٹھا کا کارن بنتا ہے, اور منوش کو آبھاس ہوتا ہے کہ اسے ایشور کی آوشکتا ہے, اتا دوسروں سے من نہیں لگانا چاہیے.
بھلی سنتان ایشوری انوکمپا ہے جو مرتیو کے پشچات بھی منوش کی بھلائیوں کے جاری رہنے کا کارن بنتی ہے. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے. اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم. آج کل
پریا شروتاؤ, کارکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے. محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے. شروتاؤ, آج کے کارکرم میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو لوگ سانسکرتک دھروہروں کی چوری یا تسکری کرتے ہیں وہ کن کارنوں سے ایسا کرتے ہیں. آشا ہے ہمارا یہ پریاس بھی آپ کو پسند آئے گا. श्रोताओं, पुराने जमाने से लेकर आज तक सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी व तस्करी की जाती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के बाद जिस चीज में सबसे अधिक फायदा है वो सांस्कृतिक धरोहरों की तस्करी व चोरी है। किसी देश की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर उस देश के लोगों की सोच की प्राचीनता का परिचायक होती है। इसी तरह सांस्कृतिक चीजें उस देश के लोगों की संस्कृत सभ्यता, जीवन शैली और परंपरा आदि को बयान करती हैं। सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी, तस्करी और लूट खसोट प्रायोजित तरीके से होती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन चीजों की चोरी, तस्करी और लूट खसोट आतंकवाद का मुख्य आर्थिक स्रोत बन जाता है और बहुत से देशों की राजनीतिक और आर्थिक पकड़ कमजोर पड़ जाती है। सांस्कृतिक धरोहरों की मांग बहुत से देशों में बड़े पैमाने पर गैर वैज्ञानिक खुदाई का कारण बनती है। इस प्रकार की खुदाई में बहुत सी चीजें नष्ट हो जाती हैं और ये पता लगाना कठिन हो जाता है कि खुदाई में मिलने वाली चीजें कितनी पुरानी हैं। पुरातत्व अवेत्ताओं का कहना है कि कोई धरोहर उसी वक्त सही अर्थ पैदा करती है जब ये पता चले कि वो कब की है। अधिकांश अवसरों पर ऐसा होता है कि खुदाई में जो चीजें मिलती हैं उनसे संबंधित बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं मिल पाती है और नतीजा ये होता है कि भौतिक दृष्टि से ही इन चीजों की कीमत लगाई जाती है। जिन चीजों की वजह से सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी, तस्करी और लूट खसोट की जाती है उनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे बहुत अधिक मुनाफे का होना, बेरोजगारी, राजनीतिक लक्ष्य और पक्षपात व अज्ञानता के आधार पर होने वाली लड़ाइयाँ। मिसाल के तौर पर सीरिया और इराक में जो कई वर्षों से लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके दौरान इन देशों की बहुत सी सांस्कृतिक धरोहरें गायब व लापता हो गई हैं। यही नहीं, इन देशों में आतंकवादी गुटों ने बहुत से सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट व बर्बाद कर दिया, जबकि बहुत से सांस्कृतिक धरोहरों को अमेरिका और यूरोप पहुंचाकर वहां उन्हें बेच दिया गया। राष्ट्रसंघ की यूनेस्को संस्था के अनुसार बहुत से सांस्कृतिक धरोहरों की खरीदारी पर लाखों डॉलर खर्च हुए हैं और कोई भी इस संबंध में जवाब देने और जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिन सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी और तस्करी करके दूसरे देशों में पहुंचा दिया गया है उनकी वापसी के संबंध में पर्याप्त कानून नहीं है। दूसरे शब्दों में पर्याप्त कानूनों का न होना इन चीजों की वापसी के मार्ग की एक महत्वपूर्ण बाधा है। पुरातत्व अवेत्ताओं का कहना है कि जो चीजें खुदाई में मिली और मिल रही हैं कुछ वर्षों से उन्हें गोपनीय संग्रहालयों में पहुंचा दिया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से इनका क्रय विक्रय होता है और किसी को ये भी पता नहीं होता है कि वे कहाँ जाएंगी और उनका अंत क्या होगा। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बहुत से सांस्कृतिक धरोहरों को दाइश और दूसरे आतंकवादी गुटों ने इराक और सीरिया से फारस की खाड़ी और दूसरे देशों में बेच दिया है और उससे बहुत अधिक धन कमाया है। ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी केवल इराक और सीरिया से की गई है, बल्कि इन चीजों की चोरी, तस्करी और लूट खसोट की कोई सीमा नहीं है। हर या कुछ दशकों के दौरान जहां से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीजों की चोरी व तस्करी की गई है उनमें से एक इस्लामी गणतंत्र ईरान है। ईरान के दक्षिण में ज़िराफ्त वो क्षेत्र है जहां बहुत अधिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक चीजें बरामद हुई हैं और उनमें से बहुत सी चीजें 5000 साल से अधिक पुरानी हैं और इस बात का ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हुआ कि इन चीजों का संबंध ईरान से है। इन चीजों की वापसी के संबंध में ईरान ने काफी प्रयास किया जिसके नतीजे में 10 साल पहले कुछ चीजें ब्रिटेन से ईरान वापस मिली और उन्हें दोबारा ईरान लौटाया गया। यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि जिन सांस्कृतिक धरोहरों की तस्करी व चोरी की जाती है उनमें से बहुत सी चीजें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में मिलती हैं। दूसरे शब्दों में इन चीजों की तस्करी और चोरी करने वाले पश्चिमी व यूरोपीय देशों को अपने गैर कानूनी कार्यों की बेहतरीन बाजार समझते हैं। रोचक बात यह है कि यही देश स्वयं को मानवाधिकार की रक्षा का ठेकेदार भी समझते और कहते हैं और अपने राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए दूसरे देशों में मानवाधिकारों के हनन के बारे में रिपोर्टें भी प्रकाशित करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अगर इंसाफ और वास्तविकता के दृष्टि से देखा जाए तो मानवाधिकारों का हनन सबसे अधिक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिम यूरोपीय देशों में होते हैं और ये देश विशेषकर अमेरिका जो दूसरे देशों में मानवाधिकार के हनन के बारे में रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं उसका मूल लक्ष्य इन देशों में हो रहे मानवाधिकार के हनन से आम जनमत के ध्यान को भटकाना होता है और आम लोग ये सोचते हैं कि जिन देशों के बारे में रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं मानवाधिकारों का हनन वहीं होता है और जो देश मानवाधिकार के हनन की रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं वहां किसी प्रकार का मानवाधिकार का हनन नहीं होता है जबकि वास्तविकता कुछ और है। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी व यूरोपीय देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार और हिंसात्मक कार्रवाइयां होती हैं वो किसी से छिपी नहीं है। यही नहीं, इन देशों के मूल निवासियों के साथ इन देशों की पुलिस की जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयां हैं वही मानवाधिकार के संबंध में इन देशों के दावों की वास्तविकता की पोल खोलने के लिए काफी हैं। फ्रांस में कई महीनों तक लोगों ने इस देश के राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ हर शनिवार को प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारी मारे गए, दर्जनों को बुरी तरह मारा पीटा गया। अमेरिका में प्रदर्शन करने वालों की आंखों में मिर्ची का स्प्रे डाला गया। श्याम बाढ़ के अमेरिकी लोगों और अमेरिका में रहने वाले दूसरे देशों के नागरिकों के साथ जो भेदभावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार होते हैं उसके खिलाफ मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले देशों की ओर से कभी भी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती। यही नहीं, जो लोग अमेरिका में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं उन्हें आतंकवादी और असामाजिक तत्व भी कहा जाता है। श्याम बाण के एक व्यक्ति की अमेरिकी पुलिस द्वारा निर्ममता से की जाने वाली हत्या को नमूने के तौर पर देखा जा सकता है। हर कुछ समय पर यह खबर सुनने को मिलती है कि अमेरिका के अमुक राज्य व शहर में अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों की हत्या कर दी गई, पर कोई भी ये नहीं पूछता कि जिन लोगों की हत्या की गई उनका अपराध क्या था और जिन लोगों ने हत्या की वे कौन थे और अमेरिकी पुलिस ने उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की। जिन सशस्त्र लोगों ने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की उनके लक्ष्य क्या थे, उन्होंने किन कारणों से ऐसा किया। अगर अमेरिका में मानवाधिकारों का बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है तो इस देश की जेलों में लाखों लोग क्यों बंद हैं और बंद होने वालों में अधिकांश काले लोग क्यों हैं? क्या जो लोग गोरे हैं वे अपराध नहीं करते हैं, जबकि अमेरिका में गोरे लोगों की संख्या काले लोगों की अपेक्षा अधिक है। अमेरिकी जेलों में अधिकांश श्याम वर्ण के लोगों का होना इस बात का जीवंत प्रमाण है कि इस देश की पुलिस पूरी तरह भेदभाव से काम लेती है। अमेरिका स्वयं को मानवाधिकारों का रक्षक कहता हुआ समझता है जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर अमेरिका वास्तव में मानवाधिकारों की रक्षा के दावे में सच्चा है तो उसने इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में जो कुछ किया है उसे किस खाते में डाला जाएगा। 20 वर्षों तक अफगानिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने और इस देश में शांति स्थापित करने के बहाने अमेरिकी और नेटो के सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद रहे, परंतु आज तक वहां से न तो आतंकवाद का सफाया हुआ और न ही इस देश में शांति स्थापित हुई। यही नहीं, मादक पदार्थों की खेती और उसकी तस्करी में कई गुना की वृद्धि हो गई। जब तक अमेरिकी और विदेशी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे उसके दौरान हजारों अफगान नागरिक मारे गए। मारे जाने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका और नेटो के सैनिक अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने और वहां शांति स्थापित करने के लिए गए थे, पर 20 वर्षों तक वे अफगानिस्तान में रहे, न तो आतंकवाद का सफाया हुआ और न ही शांति स्थापित हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन देशों के सैनिक 20 वर्षों तक वहाँ क्या कर रहे थे। 20 वर्षों में अफगानिस्तान में जो लोग मारे गए और जो तबाहियां हुई उसका जिम्मेदार कौन है। इराक में कई वर्षों से अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, यद्यपि इस समय पहले की अपेक्षा उनकी संख्या कम है, परंतु अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के दौरान हजारों नहीं बल्कि लाखों इराकी हताहत व घायल हुए। कई साल पहले इराक की प्रसिद्ध जेल अबू गरीब में अमेरिकी सैनिकों के कृत्यों का जिम्मेदार कौन है। हजारों इराकियों की हत्या के जिम्मेदार अमेरिकी सैनिकों पर आज तक किसी प्रकार का कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। इस कार्य को मानवाधिकारों की रक्षा के किस खाते में डाला जाएगा। 26 मार्च 2015 से सऊदी अरब ने यमन पर सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना पाश्विक हमला आरंभ कर रखा है। मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले किसी भी देश ने आज तक सऊदी अरब के अपराधों की न केवल भर्त्सना नहीं की बल्कि इनमें से कुछ देश सऊदी अरब को आधुनिकतम हथियारों से लैस भी करते रहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अब तक अरबों डॉलर के हथियार सऊदी अरब को बेच चुके हैं। दूसरे शब्दों में ये देश एक ओर मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरते हैं और दूसरी ओर हमलावर देश को हथियारों से लैस करते हैं। अगर कोई इंसान किसी को हथियार दे और साथ ही वो मानवाधिकारों की रक्षा का राब भी अलापे तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। यही हाल अमेरिका और उन पश्चिमी व यूरोपीय देशों का है जो सऊदी अरब को विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस करते हैं और सऊदी अरब उन्हीं हथियारों से यमन की निहत्थी मनिर्दोष जनता की हत्या करता है। बहरहाल मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले देशों के दावों की ये वो वास्तविकता है जिससे विश्व जनमत बहुत अच्छी तरह अवगत हो चुका है और अब विश्व जनमत को गुमराह नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हुआ। अनुमति दें।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे थे। कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।